بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اردو پاڈ کاسٹ، میرا نام ہے وقاص میر اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں امام سلیم الوی صاحب۔ آپ کو بہت بہت ویلکم ٹو دا شو۔ آج ہمارا پروگرام ہوگا جی بچوں کے بارے میں، بچوں کی پرورش کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔
بہت شکریہ وقاص میر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بڑے اچھے ایشوز پہ، جو سوشل ایشوز ہیں، برننگ ایشوز ہیں، ان پہ آپ جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے آپ اپنے سامعین اور اپنے لسنرز تک، یعنی جو ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں یا اس کی کوئی جو ہے وہ سلیوشن کی طرف، پریکٹیکلی اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے موجودہ زمانے کے اندر، یا اسلام ہمیں جو ہے وہ کس حد تک فلیکسیبل رکھتے ہوئے معاملات بتاتا ہے۔ تو یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور ان ایشوز کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، اور ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کے سلوشن کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔
بالکل۔
تو اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ سیشن کیا تھا وہ تھا فیملی ایشوز، اور اسپیشلی جو ڈائیورس کی ریزنز ہیں، یعنی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا ہے یہ، یعنی تربیت اولاد کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی ہم تربیت کیسے کریں۔ یعنی بچہ، اس کی مثال ایک جو پودے کی طرح ہے، یعنی ایک نازک پودا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ سردی گرمی سے بچائیں گے، اس کو ٹائم پہ اس کی آپ کانٹ چھانٹ کریں گے، اس کو کھاد وغیرہ دیں گے، پانی دیں گے، سردی گرمی ٹمپریچر کا خیال رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ پودا، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، اور جب جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زمانے کے گرم سرد وہ برداشت کر لیتا ہے جب وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو بچوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ بچے جو ہے وہ جب پیدا ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو ہر حوالے سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ والدین کی دو اینگل ہیں، ایک اینگل تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ رسپانسبلٹی بھی، یعنی ہم گفٹ کے طور پہ تو اس کو لیتے ہیں لیکن ساتھ اس کی رسپانسبلٹی کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ بات جان لو کہ تمہارا مال بھی، تمہارے ریسورسز بھی، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم عام طور پہ فتنہ تھوڑا سا نگیٹو معنی کے اندر کرتے ہیں، فساد کے معنی کے اندر، لیکن فتنہ صرف فساد کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فتنہ جو ہے وہ ایک امتحان کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، تو ہم اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو معاشرے کا ایک وہ ذمہ دار شہری بناتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہی اولاد جو بھی نیک کام کرے گی اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہوگا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، یہ ایک تو اس کا علمی کنٹریبیوشن ہے، دوسرا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، اور تیسرا اس کی نیک اولاد۔ تو نیک اولاد بھی اس کے لیے باقاعدہ اس کے بینک بیلنس میں، اس کی نیکی کے اضافے میں اس کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہی جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اس کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔
لیکن مولانا صاحب، ایک کیونکہ ہم سننے والوں میں سے کافی لوگ پاکستان سے بھی ہوں گے، اور کافی لوگ مختلف ممالک میں بھی ہوں گے، ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہوں گے، تو کیا پاکستان میں رہتے ہوئے یا پھر کسی بھی مسلم ملک میں رہتے ہوئے بچوں کی پرورش کرنا مختلف ہوگا طریقہ ان سے جو کہ باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ہمیں مختلف چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی؟ کوئی آپ نے محسوس کیا اس چیز کے بارے میں؟
قاسمی، اس وقت جو ہے نا دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، چاہے آپ مسلم میجارٹی کنٹری میں ہوں یا مسلم مینارٹی کنٹری میں ہوں، چیلنجز تقریباً ایک جیسی ہیں۔ چیلنجز کا تھوڑا سا، یعنی ٹیکل کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال چیلنجز اس وقت جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ جن میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی ایک چیلنج کے طور پہ ٹول بھی ہے،
بہت بڑا
ٹول بھی ہے اور چیلنج بھی ہے۔ بچوں کا سکرین ٹائم آپ نے کیسے ریڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ چاہے میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ پاکستان میں رہنے والوں کا یا ویسٹ میں رہنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے وہ یونیورسل پرابلم بن چکا ہے،
ٹھیک
ہے، اس طرح کے چیلنجز ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیزیں ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو مورل ویلیوز ہیں، وہ مورل ویلیوز سوسائٹی کے اندر آلریڈی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی سے وہ لے رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں مسلم میجارٹی کنٹری ہے تو وہاں پہ مورل ویلیوز ظاہر بات ہے دوسرے انداز میں، دوسرا اسکول میں تربیت اور وہ ساری چیزیں वहाँ पे वो इस्लाम का सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
बिल्कुल
लेकिन वेस्ट में रहते हुए उसका थोड़ा सा दूसरा अंदाज़ होता है। लेकिन जो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, चाहे ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, माइनॉरिटी कंट्री में हो या मेजॉरिटी कंट्री में हो, उनकी ज़िम्मेदारी अपनी जगह पे है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें। और बच्चे टाइम जब उन्हें मिलता है तो फिर, यानी टाइम का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बैठ के खाना ही सिर्फ खाया जाए या उनके साथ सोया जाए। टाइम का मतलब ये है कि उनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उनकी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी ली जाए, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सुनी जाएँ, उनके साथ शेयर की जाएँ, उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की जाएँ। और फिर क्या होगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी, उसकी ग्रूमिंग होती है। और जब भी बच्चों से बात की जाए तो दलील के साथ बात की जाए, लॉजिक के साथ बात की जाए। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं आपको मिसाल दूंगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बच्चे जो थे, मुख्तलिफ उनकी अजवाज थी, तो बच्चों को बाकायदा तौर पे वो ऑन बोर्ड रखते थे। ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि घर के अंदर ही कोई काम करना है तो भाई ये काम है, ये ऐसे है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जब आप उनको समझाते हैं, हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर एक छोटी सी चीज़ है कि बच्चों को भाई ये चीज़ भी तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। या एक और जो प्रॉब्लम है कि जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो वो फैमिली इश्यूज़, अब उसको एक्सपीरियंस चाहे शोहर कर रहा है या वाइफ कर रही है, लेकिन उन फैमिली इश्यूज़ को जब आप बच्चों के सामने डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों के, तो चाहे शोहर के बहन भाई हैं या बीवी के बहन भाई हैं, बच्चों के तो वो दोनों एक तरह से एक जैसी रिलेटिव हैं ना। बच्चों की खालाएं
जैसे
हैं या मामू हैं, इधर से बच्चे की फूफियाँ और चचा हैं,
बिल्कुल
ठीक है। तो उसमें जब आप अपने वो इश्यूज़ उनके सामने डिस्कस करते हैं, तो बच्चों के जहन में अपने उस रिलेटिव के बारे में एक नेगेटिव इमेज बनना शुरू हो जाता है। और उसमें फिर ये होता है कि वो दुनिया होते होते फिर आगे जो वो मसाइल बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि कोई भी इशू हो, यानी इकोनॉमिकल इशू हो या कोई भी इशू हो, बच्चों को अनबोर्ड करना चाहिए। अनबोर्ड का मतलब ये है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे जब तक वो छोटे हैं, उनके सामने उनके रिलेटिव्स के बारे में कोई नेगेटिव, जब वो बड़े हो चुके हैं तो फिर आप उनको, जब वो ख़ुद अच्छाई बुराई में तमीज़ कर सकते हैं, जब बाकी सारी चीज़ों में, तो फिर आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, फिर उनको बता सकते हैं। लेकिन जब तक वो छोटे हैं तो उस उनके सामने किसी
इधर की
रिलेटिव
बात ना
के,
करें,
जी जी
मतलब
रिलेटिव के बारे में कोई नेगेटिव नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल
इसी तरह मियाँ बीवी के आपस के भी जो मसाइल हैं, तो वो उनके अपने बेडरूम के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। वो ड्राइंग रूम में
नहीं
जो
आने
वो
चाहिए
नहीं
बच्चों
आने
के सामने,
चाहिए,
खास
बच्चों
तौर
के
पे नहीं
सामने
आने
नहीं
चाहिए,
आने
क्योंकि हमने
चाहिए।
ये देखा है कि हमारे कल्चर में तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम होती चली जा रही हैं कि बच्चों के सामने डिस्कस किया जाता है, क्योंकि बंदा मुफ्ती लोगों को सुनता है तो वो कहते हैं जी बच्चों को पता होना चाहिए, बच्चों के साथ मशवरा करना चाहिए। तो उनको ये लगता है कि शायद मशवरे के अंदर ये भी आ गया है कि माँ बाप के आपस में जो झगड़े हैं वो बेटा जी आप देखें कैसे होते हैं, क्यों हुए हैं, इसके पीछे आप बताएं कि क्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की हद तक चले जाते हैं बच्चों के मशवरे की सजेशन जो उन्होंने सुनी होती किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, कि वो बच्चे को ऑन बोर्ड हर एक चीज़ में ले लेते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि हद का लाइन कहाँ लगानी है, कि बच्चा जब काम स्कूल पर जाएगा या फिर सो रहा होगा तब बंदा बात करे।
कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, यानी हर चीज़ बच्चों के साथ डिस्कस करनी। उसमें मैंने जिक्र किया है कि बच्चों की एज के लिहाज से उनके साथ बातें डिस्कस की जाएँ, जो जो बच्चे और होते जाएँ आप उनके साथ सारी चीज़ें जिक्र करें। लेकिन जब तक वो छोटे हैं, वो जिसको कहते हैं कि उनकी मेच्योरनेस उसमें नहीं आई है, स्कूल गोइंग है, तो उनके साथ जब आप वो बातें करेंगे तो वो सारी आगे नुकसानदेह साबित होगी उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से।
क्या कभी भी मियाँ बीवी, माँ बाप, मियाँ बीवी माँ बाप कभी भी कोई ऐसी बात है जो कि उनको बच्चों से नहीं करनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि बेडरूम की बातें होगी, जो कि बेडरूम का मतलब ये हुआ कि लड़ाई झगड़े की, कोई ऐसी बातें जो कि बहुत ही पर्सनल बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों को नहीं समझ आएगी कि मैं किसकी साइड पर जाऊँ। कोई ऐसी बातें हैं जो कि बच्चों से करनी चाहिए और कोई ऐसी बातें हैं जो बच्चों से नहीं करनी चाहिए? कोई आप एग्जाम्पल्स अगर दे सकते हैं, कोई आपकी नज़र में कोई गुजरे हों ऐसी चीज़ें
असल
आप।
में ना ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों के साथ भी ना, नहीं ये सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास करार दिया,
बिल्कुल
ठीक है, कि लिबास में और बॉडी में कोई जो है वो फ़र्क नहीं होता है, कोई जो है वो डिस्टेंस नहीं होता है, वो जुड़े हुए होते हैं।
सही बात
लेकिन बाकी जितने भी रिश्ते हैं उनको अल्लाह ने इतना करीबी करके नहीं बताया है कि अब बच्चे भी हैं ना, मियाँ बीवी आपस में जो एक दूसरे से हर बात कर सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं। बहन भाई एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते हैं, इसी तरह बच्चे वालिदैन के साथ हर बात नहीं कर सकते हैं। यानी बाज़ ऐसी पर्सनल चीज़ें आ जाती
बिल्कुल
हैं, तो
बिल्कुल
उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है, इसमें जो माँ और बाप इन दोनों का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो के चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है।
सही
रिस्पॉन्सिबल इन अ सेंस के जब भी वो कोई बात कर रहे हों तो उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरी इस बात के साइड इफ़ेक्ट आगे क्या होंगे। ये भी मैं पिछले हफ्ते की आपको बात बताता हूँ, एक साथी यहाँ पे आए और उन्होंने अपने फैमिली इश्यूज़ को डिस्कस किया और उनके काफ़ी सारे मसाइल थे। अब उनकी बेटी 8 साल की बेटी है, तो वो ख़ुद मुझे बता रहे थे कि मेरी बेटी ने मुझे के पापा मैं सारा कुछ देख रही हूँ, ठीक है, मेरे सामने है कि जो कुछ मामा आपके साथ कह रही हैं, मैं भी तो मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं सकती, ठीक है, लेकिन ये सारी बातें मेरे सामने। तो अब यानी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 8 साल की बच्ची है या 6 साल की बच्ची या बच्चा है, तो वो ठीक है, वो अपनी बात कह नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो है वो एहसासियत होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते
मेंटल
हैं
स्ट्रेस भी है ना बहुत
जी।
ज्यादा इसमें।
तो इस हवाले से इस चीज़ को बड़ा समझना चाहिए। इसमें फिर कुछ चीज़ें हैं कि हमारे जो वालिदैन हैं या हम यानी स्पेशली कि वो उन चीज़ों को यानी बच्चों की तरबिया के हवाले से कि हम घर के अंदर ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, बनाने चाहिए। मुझे पिछले दिनों एक साथी के घर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने अपने घर के अंदर जो ही एंटर हों तो दरवाजे के साथ ही क्वीन ऑफ फ्लैक्स बनवा के ना बोर्ड बनवा के कि घर के रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं भी, घर में 10 बजे के बाद जो है वो लाइट बंद हो जाएगी, अच्छा उसके बाद जी स्क्रीन टाइम इतना होगा, अच्छा उसके बाद खाना सबने मिल के खाना होगा, इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई नहीं थी। तो ये बड़ी अच्छी, मैंने उसकी बाकायदा पिक्चर ली, मैं पिक्चर आपसे शेयर भी करूँगा। ऐसी चीज़ें कि घर के अंदर प्रैक्टिकली आप यानी सिर्फ यानी ऐसे ना करें कि आप कवायद जवाबित बनाएं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, नहीं, प्रैक्टिकली जिनको इम्प्लीमेंट करना आसान भी हो। फिर अगली चीज़ ये है, हमारे वालदैन ये समझते हैं कि हमने, हमारी जो ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के खाना पीना, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना, यही सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ असल हमारी ज़िम्मेदारी उनकी तरबिया करनी है। और तरबिया के अंदर जो बुनियादी चीज़ है कि बच्चे हमारी बातों से नहीं सीखते, बच्चे हमारे एक्शन से सीखते हैं, यानी बच्चे ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि जब माँ के रिलेटिव आते हैं तो माँ कितना जो है वो उनको उनको वेलकम करती है, ठीक है, वार्म वेलकम होता है, और जब वालिद साहब के रिलेटिव आते हैं तो माँ का बिहेवियर उनके साथ कैसा होता है, तो उसी से बच्चे वो आगे सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं,
बॉडी लैंग्वेज देखते हैं ना
बॉडी
बच्चे
लैंग्वेज
से।
देखते हैं। इसी तरह ये तो है ना बिहेवियर, और बाकी ये है कि वो देखते हैं कि भाई माँ बाप नमाज का एहतमाम करते हैं कि नहीं करते, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो वो अगर देखें कि ये फॉलो नहीं कर रहे तो फिर क्या है कि आगे आपके लिए वो सारी चीज़ें, आप जो भी उनको अच्छी से अच्छी बातें कर लें कोई उन्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप खुद फॉलो करते हैं तो फिर ये होगा कि वो चीज़ें आगे बच्चों की शख्सियत के अंदर शामिल होती जाएंगी।
बिल्कुल, क्योंकि एक एक ऐसी एज होती है बच्चे की जब आप बच्चे को डरा धमका के कुछ करवा लेते हैं उससे। मैं ये नोट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता से कि देखता हूँ मैं इर्द गिर्द भी और अपने बच्चों में भी देख रहा हूँ कि एक ऐसी उम्र होती है जो कि हमारे हम वालदेन के लिए आइडियल होती है कि हम बच्चे को कुछ भी कह के करवा लेते हैं कुछ। लेकिन जब बच्चे की एक उम्र एक ऐसी कैसे जोन में दाखिल होना शुरू हो जाती है जब आप जब वो खुद सोचना शुरू कर देता है तब आप कहते हैं ये पहले तो ऐसे नहीं करता था या करती थी। तो ये इसके लिए आपकी तरफ से कोई राय है हमारे लिसनर्स के लिए जो कोई ऐसी एडवाइस कोई ऐसी खूबसूरत से कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि हम जब बच्चों से बात करें तो हम अपने अंदर से गवर्नर अपने अंदर से निकाल के साइड पे रख के प्रेसिडेंट को साइड पे करके एक बाप एक मुस्लिम बाप और एक मुस्लिम माँ बन के बच्चे से कैसे बात करें कैसे कैसे अपने आप को रिमाइंड कराएं कि बच्चा जो मेरे सामने बैठा है इसका मुझे जवाब देना है एक दिन।
इसमें दो दो तीन चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि 3 C's उनसे इज्तनाब किया जाए।
ठीक है
पहला सी जो है वो क्रिटिसाइज़ करना, नहीं, बच्चे को कभी क्रिटिसाइज़ ना करें, तो उसकी शख्सियत के अंदर नेगेटिविटी और एक जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो जाता है।
बेशक बेशक
पहला क्रिटिसाइज़ सी, पहले इस सी से इज्तनाब करें। दूसरा सी कंपेयर करना, यानी कंपैरिजन आपको उसके साथ ना करें कि फलां का बेटा वो तुम्हारा क्लास फेलो है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, फलां तुम्हारा कज़न ऐसे है, कभी कंपेयर ना करें। एवरी पर्सन इज़ ए यूनिक,
बिल्कुल
ठीक है, हर बच्चा यूनिक है,
बिल्कुल
ठीक है। इवन कि बहन भाइयों में भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि आपकी बहन तो ऐसी है, आपका फलां भाई तो ऐसा है, आपकी है, कभी भी कंपैरिजन ना करें, यानी क्रिटिसाइज ना करें, कंपेयर ना करें, और तीसरा कम्पीट कम्पीट उनमें ना करवाएं, ठीक है। ये तीन सीज इनसे आप इज्तनाब करें, ठीक है। बच्चा यानी जब आप उसको कंपटीशन पे ले जाते हैं ना, फलाने इतने नंबर लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो मैट्रिक में इंटर में 99% नंबर ले रहा है, ठीक, यानी फुल वो रेस के घोड़े बने हुए हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है उस बच्चे के अंदर, उसका जब अब पहले हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो यानी उस दौर में चीज़ें प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, यानी जब हमने बायो पढ़ी, मैंने मैट्रिक में बायो पढ़ी, तो मुझे आज भी याद है कि वो टेम्परेचर कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी बाकायदा, प्रैक्टिकली हमें सिखाया गया था। लेकिन आजकल प्रॉब्लम यह है कि वो चीज़ें नंबरिंग के हवाले से तो फोकस होता है, लेकिन कंसेप्चुअल स्टडी नहीं है कि कंसेप्ट उसके क्लियर हों, और उसके बाद फिर जब जाहिर बात है कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो रट्टा उसने लगाया हुआ है, तो वो उसने एक चीज़ तो हासिल कर ली, अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन वही जब बच्चा कंपिटिटिव एग्ज़ाम में जाता है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जाता है, इवन के मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में जाता है, तो वो वहाँ पर फेल हो जाता है, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाता। उसकी वजह क्या है कि वो फोकस ही हमारा एक दूसरे लेवल पे चल रहा है, हमारा जो है वो लर्निंग पे फोकस नहीं है कि उसने कुछ लर्न करना है, सिर्फ जो है वो गेन पे फोकस है कि उसने कितने नंबर हासिल किए हैं, और ये उसका एक प्रॉब्लम है। तो इन तीन सीज से अपने आप को बचाया जाए कि वालिदैन स्पेशली वो कभी अपनी औलाद का कंपेरिजन ना करें, कम्पीट ना करवाएं, क्रिटिसाइज़ ना करवाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, औलाद को अपनी मिल्कियत ना समझें,
ये बहुत मुश्किल है
ये
काफी वालदैन के लिए,
औलाद मिल्कियत नहीं है,
नहीं है बिल्कुल नहीं।
औलाद हमारा गिफ्ट, अल्लाह ने हमें एक गिफ्ट दिया और एक अमाना है हमारे पास, ठीक है, ये अमानत है कि हम उसके मालिक नहीं बन गए हैं कि हम सारी ज़िंदगी उसको कठपुतली की तरह नचाते रहें। ये बहुत बड़ा मसला है
बहुत बड़ा
कि अब बच्चा जब छोटा है तो जब तक वो मजबूर है ना, जब तक वो मजबूर है, जब तक वो डिपेंडेंट है, ठीक है, उस वक़्त तक तो फिर वो वालदेन की बातें सुनता है, ठीक है, और मजबूर जो है। लेकिन आपने जिसकी तरफ पहले सवाल में बात की है कि लेकिन जब वो बड़ा होगा, ठीक है, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर वो उस तरह नहीं होता है।
बिल्कुल सही
तो उसकी वजह क्या है कि आपने पहले उसकी उसको इतना दबा के रखा है, उसको इतना वो करके रखा है कि आपके और उसके दरमियान एक डिस्टेंस पैदा हो गया है, एक फासला पैदा हो गया है, अब वो अपने साथ आपके साथ अपनी चीज़ें नहीं शेयर करता है। तो आप इन्हीं बच्चों को कठपुतली न बनाएं, बच्चों के को अपनी मिल्कियत न समझें, बल्कि बच्चों की एक शख्सियत है। हमारे यहाँ एक आमतौर पर यह समझा जाता है कि बच्चों के साथ जो मुशावरत है, जो जिसमें जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया है कि मुशावरा सिर्फ यही है कि उनको नेगेटिव बातें उनके सामने जी उसके रिश्तेदारों की सारी नेगेटिविटी वो उनका, या इसी तरह सब्जेक्ट के हवाले से मशवरा करना है, या सिर्फ जो है वो उसकी जो है वो फ्यूचर लाइफ के हवाले से, शादी के हवाले से मशवरा करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। और उसके अंदर भी फोकस क्या होता है कि अपनी पसंद को जो है वो भाई ताकि वो कर ले, उसकी अपनी पसंद, उसका अपना रुझान, उसका अपना मिजाज, उसकी अपनी दिलचस्पी, वो सारी चीज़ें उनको हम अहमियत नहीं देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चा मजबूर होके चीज़ें कर तो लेता है, मजबूर ना भी हो तो वो उस वक्त तो कर लेता है, लेकिन उसका चूंकि अपना रुझान नहीं होता, जब अपना रुझान नहीं है तो वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में वो उनको एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उनको लेके नहीं चल सकता है। तो इसमें ये चीज़ जो तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो टिप की चूँकि आपने बात की है कि लोगों के लिए नफ़ा बख्श उनको बनाने की कोशिश की जाए, कि आप सोसाइटी के लिए आपका पॉजिटिव रोल होना चाहिए, आप डॉक्टर बेशक न बने, इंजीनियर बेशक न बने, लेकिन एक पॉजिटिव आप इंसान बने, और अच्छाई और बुराई में उन्हें तमीज़ सिखानी चाहिए। बाकी देखें डिग्री जो भी ले लेगा, ठीक है, वो तो जस्ट एक उसका आप कह सकते हैं कि फ्यूचर या एक सोर्स ऑफ इनकम ये वही बन सकता है ना, रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने उठाई है, यानी हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वालिदैन होने की हैसियत से कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें अच्छाई बुराई की तमीज़, सही गलत की तमीज़ उन्हें सिखाएं, रिश्तों की पहचान उन्हें करवाएं, क्योंकि रिश्ते भी जो है ना ये एक सपोर्टिव सिस्टम है, यानी जो ख़ानदानी निज़ाम है ये फैमिली का एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, ठीक, और
बेशक
उसमें बच्चे सीखते हैं इन चीज़ों से कि भाई बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, उसकी क्या मिठास है। अब देखिए ना, जिन जो बच्चे इस तरह अपने कज़नों और बहनों भाइयों के साथ नहीं, वो अकेले बड़े होते हैं, उनकी शख्सियत में बहुत सारे जो है वो होल्स होते हैं, ये बहुत सारे जो है वो ड्रॉबैक्स उनके अंदर रह जाते हैं। ये इसी तरह जो बच्चे वालिदैन अगर अलग हो गए हैं, ठीक है, तो अब बच्चा एक हफ़्ता माँ के पास, एक हफ़्ता बाप के पास या माँ के पास ही है, तो उसको तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है,
बिल्कुल
बाप की भी ज़रूरत है, माँ की भी ज़रूरत है। तो उसकी शख्सियत के अंदर और एक बच्चा की जो एक मुस्तहकम फैमिली के अंदर जिसकी ग्रोथ होती है, तो उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, वालिदैन बनने के हवाले से एक तो मैंने कुछ टिप्स पहले ज़िक्र की हैं, कुछ चीज़ ऐसी हैं कि देखें, मतलब बच्चों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। ख़ुद जब ज़ाहिर बात है कि हम हुज़ूर की सुन्नतों को प्रैक्टिस करने वाले होंगे, तो फिर वो बच्चों को के अंदर भी वो चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। जैसे अब देखें, छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब हम कंघी तो वैसे भी करते हैं, बच्चे ने गुसल किया है तो गुसल करके उसके बाद उसने कंघी तो वैसे भी करनी है, बाल आपने साफ उसके संवारने हैं। तो अगर आप उसे ये कहें कि जी ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है कंघी करना, से ठीक है कि अपने आप को सफाई का ख्याल करना, खुशबू लगाना, ठीक है, तो ये चीज़ें फिर जो है वो उसके अंदर एक जो है
कनेक्शन बनाए हूँ।
जी हुजूर के साथ कनेक्शन, दीन के साथ एक अटैचमेंट उसकी, यानी बच्चों को मजबूर करके ना किया जाए। कहने का मकसद ये है कि बच्चों को मजबूर करके, यानी यहाँ पे हमारे एक साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक दिन मेरे साथी यही बात डिस्कस करने लगे, कहते हैं कि जी मेरे बच्चे थे तो बड़े अच्छे, वो अज़ान भी देते थे और इधर आके जी बड़ा है, लेकिन अब जो ही बड़े हुए हैं तो वो मस्जिद का नाम ही नहीं लेते, मस्जिद आते ही नहीं है, तो वो अपना एक लिहाज दर्द ही मेरे साथ शेयर करने लगे। तो मैंने उनसे फिर एक सवाल किया, मैंने कहा कि जब आपके बच्चे जब मस्जिद आते थे तो वो अपनी खुशी के साथ आते थे या आप उनको मजबूर करके लाते थे? तो वो मुझे बताने लगे कि नहीं, मैं तो उन्हें बड़ी सख्ती करता था, मैं तो घर में पिटाई भी करता था, डंडा भी चलाता था। तो मैंने कहा कि वो उसका रिएक्शन है ना, तो अगर आपने तब बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा की होती ना, कि दीन की मोहब्बत, ठीक है, तो फिर दीन की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में वो काम करते। लेकिन आपने मोहब्बत के बजाय चूंकि सख्ती की है, तो सख्ती देखिए ना, दो पहलू है ना, एक जलाल का पहलू है, एक जमाल का पहलू है।
मान लो सही बात
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाल का
है।
पहलू, खूबसूरती का पहलू, नरमी का पहलू, उसको आपने इख्तियार किया। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में भी अल्लाह ने जब रोज़े फ़र्ज़ किए तो उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, मुसाफिर को रुख्सत दी, मरीज़ को रुख्सत दी, और साथ फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहता है, तुम्हारे लिए तंगी नहीं पैदा करना चाहता। तो दीन के मामलों में इसी तरह, यानी हर मामले के अंदर आसानी का पहलू, बच्चों पर सख्ती, हमारे यहाँ वो जो मुहावरा बना हुआ है कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से,
इसी ने ख़राब किया काफ़ी ज़्यादा वालदैन के जहन को,
इस मुहावरे ने
इस
और
मुहावरे ने
ये सोच, वो एक पूरी मेंटेलिटी, सिर्फ मुहावरा नहीं है ये, तो एक मेंटेलिटी है ना,
मेंटेलिटी बन गई
ठीक
है।
है। तो और उसकी वजह से क्या हो गया कि बच्चे और उनके औलाद के दरमियान, वालिदैन और औलाद के दरमियान एक फासला पैदा हो गया। अब बच्चे आपके साथ इतना इजी, और उसमें हमने ये देखा है कि जब ऐसा माहौल हो घर के अंदर, तो फिर बच्चे ना अपने आप को एक घुटन घुटन सी महसूस करते हैं, तंगी सी महसूस करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को आज़ाद और ओपन महसूस करते हैं। तो घर के अंदर आप बच्चों को फ्री हैंड दें,
कितना फ्री
ठीक
हैंड होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए? अब मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, 6 साल का बच्चा हो गया, 8 साल का हो गया, 12 का हो गया, 15 का हो गया, क्या 18 साल का भी बच्चा होता है? अभी कहीं सुनने वालों के बच्चे, उनको तो बच्चा ही कहते हैं, नहीं मेरा 17 साल का बच्चा है
नहीं,
माशाल्लाह
वालदेन की नज़र में तो खैर 40 साल का वो भी बच्चा
वो भी बच्चा
बच्चा
ही
ही
है,
होता है वालदेन की
लेकिन
नज़र
लेकिन
में
दीनी हवाले से आप क्या क्या
जी।
एडवाइस देंगे उनको कि कब आप अपने बच्चे को बच्चा तो समझें लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना, हल्का हल्का सा उनको
देखिए
फ्रीडम
हमें,
देते चले जाएं।
देखें हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो
समझ
बात समझाई है ना, कि 7 साल की उम्र तक बच्चे का बचपन है, उसको बिल्कुल ना छेड़ें, कुछ भी ना कहें, ठीक है। 7 साल के बाद 10 साल की उम्र तक जो 3 साल का है उसमें उसको सिखाना शुरू करें, क्योंकि उसका सीखने का, और 10 साल के बाद थोड़ा सा आप फिर उसको ना, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करवाएं, और उसके अंदर भी फिर ये नहीं होना चाहिए कि हम मार पिटाई करें, सख्ती करें, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जो अपनाई जा सकती हैं, जैसे अब आप पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, भाई अगर आपने ये गलती की ना तो इस दिन आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा वो हो सकती है, यूज़फुल हो सकती है कि भाई मैंने ये गलती की, उसको समझाया भी जाए भाई आज आपको पॉकेट मनी इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने जो है वो ये काम, आप वक्त पे सोए नहीं हैं या आपने स्क्रीन टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप बच्चों को स्क्रीन टाइम, आप अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा कंप्यूटर इस्तेमाल न करे, बच्चा मोबाइल इस्तेमाल न करे, इसी तरह जो है वो बच्चा आईपैड इस्तेमाल न करे, ये तो उसने करना है, ये उन चीज़ों को हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन उसके कुछ ना हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि भाई ठीक है, 1 घंटा या 2 घंटे इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल न करें। इसी तरह आप खेल के लिए भी, इसी तरह बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आप
उस
लगाएं।
तरफ देखा जाए, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज इस्लाम में, इस्लाम क्या कहता है कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में? आपने बताया कि मार नहीं सकते, जाहिर सी बात है। कॉन्सिक्वेंसेज भी रिस्पेक्टफुल तरीके से, एक
देखिए ना,
ऐसे
बच्चे की
सेल्फ
जो
रिस्पेक्ट।
शख्सियत है ना, बच्चे की जब उसकी शख्सियत में, यानी अब मैं अपने बेटे को ना आप कह के कहता हूँ,
माशाल्लाह।
तुम उसे नहीं कहता, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि बच्चे की शख्सियत के अंदर ये चीज़ें, आप कहें उसको रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ आप बुलाएं, बच्चे ने गलती भी की है कि बेटा, और सबके सामने ना कहें, आप अलहदा से उसको बिठाएं, बाद में समझाएं कि बेटा आपने ये जो काम किया है ये ठीक नहीं था, या आपने ये जो बात की है ये ठीक नहीं थी। पॉजिटिव अंदाज में उसको समझाना चाहिए। घर के कामों के अंदर आप एंगेज करें, जैसे अब खाना खाने लगे हैं, बीजी मिल के बर्तन लगाएं, चले यार जी अब बच्चे अब दस्तरखान समेटें, ये करें। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उसको, उसमें घर के अंदर आप उसको इन्वॉल्व करें, उससे बच्चे को सलीका आता है, तरीका आता है, उठने बैठने के आदाब। इसी तरह घर में मेहमान आए तो आप उसको, बच्चे को कहें कि जी आप थोड़ी सी जब उसको सर्व करें, तो बच्चा सीखता है, और सीख के उसको पता चलता है, उठने बैठने का पता चलता है, बात करने का पता चलता है।
दूसरे लोगों के आगे बच्चे की बेइज्जती करना, इस तरह मैंने बहुत देखा है, हमारे कल्चर में बहुत आम हो चुका है इसका, कि
नहीं,
बच्चे ने अगर
आप
बात नहीं मानी या फिर इस एज पे चला गया कि बात नहीं मान रहा, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को भी छोटी बात, वो छोटी बात नहीं समझते, वो कहते हैं कोई
नहीं
मसला
नहीं
नहीं।
नहीं देखिए, बच्चे की इज्जत नफ्स, जिस तरह बड़े बड़ों की इज्जत नफ्स होती है ना, बच्चों की भी इज्जत नफ्स होती है, और बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब आप बच्चे की कोई तारीफ़ नहीं करते हैं, उसकी खामियां लोगों के सामने बयान करते हैं, तो उसकी शख्सियत मसख हो जाती है, वो आपके बारे में एक नेगेटिव उसके दिल के अंदर जज्बात पैदा हो जाते हैं। अब बच्चे के अंदर कोई खामी है तो मैंने पहले जिक्र किया कि आप उसको अलहदा बिठा के समझाएं, खूबी है तो सबके सामने तारीफ़ करें, और
माशाल्लाह,
कंपैरिजन, बहरहाल ये हमें, ये जो 3 C's है ना, उनका खसूसी ख्याल करना
उनको
चाहिए।
याद रखें।
जी
माशाल्लाह जी, हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका। हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे एक और टॉपिक के साथ, आपके पास मैं आऊँगा इंशाल्लाह। और हमारे लिसनर्स को बताते चलें, हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे मौलाना सलीम अलवी साहब, और हमने बात की बच्चों की परवरिश के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
बहुत शुक्रिया।